सबसे पहले आपका पूरा नाम और आपका ओहदा मुझे बता दीजिए।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सैयद सादिक रज़ा तकवी और मैं मजलिस वहदत मुस्लिमीन कराची डिवीजन का सेक्रेटरी जनरल हूँ।
अच्छा मौलाना साहब, लश्कर जंगी की जानिब से अहले तशरीफ पर किए जाने वाले हमलों से क्या शिया हज़रत इश्तेहाल में आ सकते हैं और सूरत हाल सिविल वॉर की तरफ जा सकती है?
तो बहुत अच्छा और बुनियादी सवाल है और इसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की अमनियत और सालमियत से है, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं एक छोटा सा मुकदमा आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये सूरत हाल क्यों पेश आ रही है कि एक गिरोह और एक टोला और एक शरपसंद अनासर जो हैं वो एक मकतब के मुकाबले में खड़े हुए हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो गिरोह है, ये वो टोला है, ये वो दहशतगर्द हैं कि जिनका ताल्लुक़ न इस्लाम से है, ना ये सुन्नी फ़िक़ह और सुन्नी अहल सुन्नत वल जमात के हकीकी जो नज़रियात हैं उससे मुताबिकत रखते हैं और न ही ये अहल तशी के जो अकायद हैं उससे। उसकी वजह यही है कि ये असलह और ज़ोर और ताकत की बिना पर अपना नज़रिया दूसरों तक थोपना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि सिर्फ अहल तशी के साथ साथ ये पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगह कत्ल गारत और धमाकों में मुलव्वस हैं। फ़ौज से लेकर एक आम इंसान तक, वकील से लेकर डॉक्टर से लेकर इंजीनियर से लेकर एक आम सतह का इंसान, बेगुना निहत्ता इंसान इनके हमलों की निशाना बन रहा है। इस बिना पर अक्सर अहले सुन्नत वल जमात, बल्कि यूँ कहूँ कि अक्सरियत अहले सुन्नत वल जमात के मुफ्तियों की और उलमा की इस बात की तायीद करती है कि इनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, सुन्नी इस्लाम से नहीं है, सुन्नी मकतब फ़िक्र से नहीं है। ये वो अफराद हैं जो ताकत के और असलहे के ज़ोर पर अपना नज़रिया थोपना चाहते हैं और दर हकीकत ये अलकायदा और तालिबान के वो छोटे छोटे गिरोह हैं कि जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं और एक इंटरनेशनल एजेंडा है जिसके तहत पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना है, उसके लिए मुख्तलिफ पॉकेट्स में खुसूसन अहले तशी को निशाना बनाया जा रहा है। अब आता हूँ मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ कि मुख्तलिफ दहशतगर्द और कलदन तंजीमों और गिरोहों की जानिब से जो हमले किए जा रहे हैं क्या उसे अहले तशी में इश्तेआल पैदा हो सकता है? जी हाँ, ये इश्तेआल पैदा हो सकता है और मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। कब? कि जब हुकूमत और इंतज़ामिया अपने फ़राइज़ को अदा ना करे। देखिए, किसी भी गवर्नमेंट का बुनियादी काम यह होता है कि अपने शहरियों की जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करे, उसे यकीनी बनाए। और जाहिर सी बात है, जब एक आम इंसान, एक गिरोह और एक दहशतगर्द जो है दंदनाता फिरेगा, लाकानूनीत का बाजार गर्म करेगा, लॉ एंड ऑर्डर को अपने सूरत हाल अपने हाथ में लेगा और असले के ज़ोर पर जो है वो अपनी बात मनवाने की कोशिश करेगा, तो फिर यहाँ पर हुकूमत का फ़र्ज़ है कि ऐसे अफराद को रोका जाए। जब हुकूमत और अदलिया, जस्टिस जो है वो पीस फराहम करने में नाकाम हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जाहिर सी बात है एक वक्त आएगा, आप एक कौम को मार रहे हैं, दबा रहे हैं, कत्ल वगारत कर रहे हैं, दहशतगर्दी कर रहे हैं, तो उनके सबर का पैमाने में लबरेज हो सकता है। लेकिन हम एक मुहब वतन शहरी हैं, आप हमारी तारीख उठा के देखिए, पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक मिल्लत तशय्यो का किरदार उठा के देखिए, हमेशा मुस्बत तामीरी रहा है। इस तहका में पाकिस्तान में दामे दिरम है, सुखन है, हमने कोशिशें की हैं और करते रहेंगे इंशाल्लाह। इस वतन को हमने हासिल किया, इस वतन के दिफा के लिए हम कोशिशें करते रहेंगे। इस बिना पर यह इश्तियाल की कैफियत पैदा हो सकती है, लेकिन कभी भी हम कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क खाना जंगी की तरफ जाए, बल्कि हम हमेशा कानून का दरवाज़ा खटखटाएंगे, जमहूरी रास्ता अपनाएंगे और हर वो तरीका कि जो एक इंसानी और इस्लामी तरीका है, यानी किसी भी मसले को हल करने का, और कभी भी हम असलहे को हाथ में नहीं उठाएंगे।
क्या आप इस बात के हक में हैं कि अहले तशी भी हथियार उठाएं?
देखिए, दिफा का इख्तियार अल्लाह ताला ने हर जी हयात को दिया है। जिसके पास भी नफ्स है, जान है, रूह है, उसे अल्लाह ताला ने अपना इख्तियार दिया है कि वो अपना दिफा करे। ये उसका बुनियादी हक है, जिंदगी का हक है। और जाहिर सी बात है कि इंसान होने के नाते हर इंसान अपना दिफा करने का हक रखता है। दिफा करने के लिए हम असला उठाएंगे और हमने उठाया है और उठाते रहेंगे, लेकिन हम इस असले को कभी गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इस असले का नाजायज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कि हुकूमत, अदलिया और हमारे सिविल इदारे नाकाम हो चुके हैं हमें इंसाफ फराहम करने में। पे दर पे मुसलसल तवातुर के साथ मिल्लत तशय्यो की नस्ल कुशी, उनका कत्ले आम, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग, ये सब इस बात की तरफ हमें ले जा रही है कि हम अपने दिफा के लिए खड़े हों, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फोर्सेस, अपने स्काउट्स, अपने जवान, अपने रजाकार बनाए हैं जो अपने दिफा के लिए इमाम बारगाह मस्जिद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। जुलूसों की हिफाजत आप देखें कि गुज़िश्ता 10 साल पहले चले जाइए तो बहुत सारी तंजीमें जमात के आके जुलूस की हिफाजत का दावा करती थी, लेकिन आज मिल्लत के खुद अपने स्काउट्स, रजाकार और वॉलंटियर्स आते हैं, वो खुद अपना दिफा करते हैं। तो इस बिना पर हम कभी असलाह नहीं उठाएंगे किसी को ना हक मारने के लिए, बल्कि हम अपने दिफा के लिए असलाह उठाने का इख्तियार रखते हैं। ये वो हक जो अल्लाह ताला ने दिया है, ये वो हक है जो इस्लाम ने दिया, ये वो हक है जो पाकिस्तान का आईन अपने शहरियों को देता है।
आप लोगों ने जितने भी धरने दिए हैं वो पुरअमन थे, क्या आपकी फिका इस बात का तकाजा करती है कि आप पुरअमन रहें?
बिल्कुल, इस्लाम अमन आश्ती का मजहब है। वही अमन आश्ती का मजहब ये कहता है कि अगर कोई तुम पर चढ़ाई करे, अगर तुम जुल्म सितम करे तो उस जुल्म सितम को बर्दाश्त ना करो, जुल्म सितम पर खामोशी, खुद उस जालिम के जुल्म में बराबर का शरीक होना है। आप देखिए इससे बढ़कर जमहूरियत क्या होगी? बेनज़ीर का कत्ल किया जाता है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है बेनज़ीर, ऑन ड्यूटी हैं, कुर्सी पर मौजूद हैं, कत्ल होता है, पूरे सिंध को जला दिया जाता है। तौहीन अदालत का मसला होता है, एक शख्स की साख को बचाने के लिए कराची को गोलियों की नज़र कर दिया जाता है, पूरे पाकिस्तान में जो है ना वो फसाद बर्पा किया जाता है। ये जमहूरी पसंद अमल है इन जमहूरी पार्टीज़ का, या ये जमहूरी अमल है जो आपने देखा कि दो धरने पाकिस्तान की तारीख में 4-4 दिन 3-3 दिन रहे, लोग अपने वरसा की लाशों के साथ रहे, पूरे पाकिस्तान में उसकी ताइद और हिमायत के लिए धरने हुए, लेकिन ना कोई गोली चली, ना कोई पत्थर चला, ना किसी का कत्ल हुआ, और हम निहत्ते रोड पर बैठकर हमने पुरअमन एहतजाज किया। अमन एहतजाज करना हमारा हक है, आइनी, दीनी और इंसानी हक है, हमने उसे इस्तेमाल किया, लेकिन हमने कहा हम पुरअमन रखेंगे ताकि जमहूरियत पसंद कुव्वतों को इस बात का बावर करा सकें कि जमहूरी लोग कैसे होते हैं, उनका अमल कैसा होता है, ना कि जो दो मिसालें मैंने आपको दी हैं। तो हम पुरअमन हैं और पुरअमन रहेंगे, और हमारी फिकह कभी भी इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम तशद्दुद का रास्ता अपनाएं, तजावुज़ का रास्ता अपनाएं, जुल्म सितम करें, खून का बाजार गर्म करें। खुद हज़रत अली अलैहि सलाम को शहीद किया जाता है, शहीद करने वाला एक शख्स है इब्ने मुलजिम, हज़रत अली के सामने लाया जाता है तो हज़रत अली अपना दूध का जाम उसे पिलाते हैं, कहते हैं इसके हाथ खोल दो, इसको दूध का जाम पिलाओ। ये है अहले बैत, ये है हज़रत अली की सीरत। और उसके बाद ये कहते हैं कि देखो ऐसा ना हो कि अली की शहादत के बाद तुम ये कहते फिरना कि कुतिल अली, अली मारे गए, अली शहीद हो गए, और ये कह के तुम जुल्म का बाजार गर्म करो, इसने एक ज़र्ब मुझे मारी है, तुम भी एक ही ज़र्ब इसे मारना, ताकि अगर एक ज़र्ब मर गया फैसला बराबर है। कहने का मकसद ये कि हमारा फिका, हमारा दीन, हमारी शरीयत, हमारा विजदान, और सबसे बढ़कर रसूलुल्लाह और उनके अहले बैत और उनके पाकीदा असहाब का अमल दर हकीकत हमें ये देता है कि हम पुरअमन रहें और कभी जुल्म और सितम के रास्ते को नहीं अपनाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मिसाल दूंगा, करबला में आपको घेरा गया लेकिन आपने जंग में पहल नहीं की, बल्कि यजीदियों ने जब हमला किया तो फिर आपने अपने दिफा के लिए जंग का आगाज़ किया है। तो हमारी फिका, हमारा दीन, हमारा विजदान, हमारी शरीयत कभी जो है इस बात की इजाज़त नहीं देती कि हम अमन आमा की सूरत हाल को अपने हाथ में लें, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लें, जुल्म सितम का बाजार कर्म करें, ये दूसरे अपने मुसलमान भाइयों को तकलीफ़ पहुँचाएँ। हमेशा पुरअमन हैं और हमेशा पुरअमन रहेंगे, और इसी तरीके से हम दर हकीकत इस फ़िरका वारियत का दर हकीकत हम इलाज करना चाहते हैं। फ़िरका वारियत कब होती है कि जब आप अपने अकीदे को किसी दूसरे अकीदे वाले पर ज़बरदस्ती असलहे के ज़ोर पर थोपने की कोशिश करें, जैसा कि किया जा रहा है। बड़े बड़े मुमालिक जो इसमें मुलव्वस हैं और फिर उनकी ज़ेली तंजीमें यहाँ पर जो हैं, अब असलहे के ज़ोर पर मैं मिसाल के तौर पर देखिए फ़िक़ी इख्तलाफ होता है। अहले सुन्नत की 4 इमाम 4 फ़िक़ा हैं, बहुत गौर से ये मेरी बात सुनिएगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप इसको नशर करेंगे। एक सीने पर हाथ बांधता है, एक नाफ पे हाथ बांधता है, एक नाफ के नीचे हाथ बांधता है, और एक हाथ खोल के नमाज पढ़ता है। ये फ़िक़ी इख्तलाफ है या नहीं है? फ़िक़ी इख्तलाफ है चारों, लेकिन क्या जो हाथ खोलता है, हाथ बांधने वाला सीने पे, क्या उसे काफिर कहता है? नहीं। जो शिकम पे हाथ बांधता है क्या उसे नजिस कहता है? नहीं। یہ فقہی اختلاف موجود ہے. تو اسی طریقے سے جب اہل سنت کی چار فقہی فقہ میں اختلاف موجود ہے تو شیخ محمد شلتوت رحمۃ اللہ علیہ جامع الازہر کے وائس پرنسپل یعنی سابق وائس چانسلر یہ کہتے ہیں کہ جس طرح اہل سنت کی چار فقہ پر عمل کرنا درست ہے اور اس پر عمل کرنے سے انسان جنتی ہو سکتا ہے, اسی طریقے سے مکتب جعفری کی اہل تشیع کی فقہ پر بھی عمل کرنا درست اور صحیح ہے. تو فقہی اختلاف موجود ہے, فرقہ واریت فقہی اختلاف سے وجود میں نہیں آتی. اگر فقہی اختلاف ہوتا تو اہل سنت میں چار فقہ ہیں, چار امام ہیں, ہمارے 12 امام ہیں, ایک فقہ ہے, ہماری اختلاف نہیں ہے. فرقہ واریت کب وجود میں آتی ہے؟ کہ جب آپ اپنے عقیدے کو دوسرے پر مسلط کریں گن پوائنٹ پر. یہ وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ نہ اپنا عقیدہ چھوڑو نہ دوسرے کا عقیدہ چھیڑو. دوسرے کے لیے باہمی احترام اور تائید کی فضا ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے ایک موقع فراہم کریں کہ وہ آ کر ایک اچھے علمی ماحول میں اپنا مسئلہ بیان کرے. اور علمی لحاظ سے ڈائلاگ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ہم مختلف اہل سنت کی جو چار فقہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ہم ڈائلاگ کریں اور فقہ اختلاف کو دور کر کے اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف متحد ہو سکیں.
آپ کیا سمجھیں جھگڑے کا کیا حل ہے؟
دیکھیے اس کا حل یہی ہے کہ ان تمام آپ دیکھیے کہ جتنی بھی کالعدم تنظیمیں ہیں جن پر پابندی لگائی گئی ہے ان کا عمل کیا رہا ہے اب تک؟ قتل و غارت, دہشت گردی, لوٹ مار, انسانیت کا قتل, خون بہانا, اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ کوئٹہ کا واقعہ آپ دیکھیں, لشکر جنگ نے قبول کی, اس طرح القاعدہ اور طالبان نے مختلف حوالوں سے پاکستان میں ذمہ داریاں قبول کی ہیں, فورسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, ایئر بیسز ہمارے محفوظ نہیں ہیں, عدلیہ محفوظ نہیں ہے, رینجرز محفوظ نہیں ہے, پولیس محفوظ نہیں ہے, وکلاء, ڈاکٹرز, انجینئرز, سیاستدان, بلور احمد صاحب شہید, اے این پی شہید کر دیا جاتا ہے, تبلیغی جماعت کے افراد ان کو شہید کر دیا جاتا ہے, شہداء اہل سنت سنی تحریک کی پوری قیادت کو نشتر پارک میں 2006 میں شہید کر دیا جاتا ہے, اہل تشیع کے ساتھ یہ ظلم و ستم. تو یہ وہ افراد ہیں کہ جو در حقیقت اسلحے کے زور پر سب سے پہلا اس چیز کو کنٹرول کرنے کا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ حکومت سنجیدہ ہو, ان کالعدم گروہوں اور جماعتوں پر پابندی لگائے, ان کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر کے مقدمہ چلا کر ان کو کیفے کردار تک پہنچائے. چار دہشت گرد بھی اگر لٹک جائیں گے خود بخود ان کی نظریں, ان کی کمریں ٹوٹ جائیں گی. پھر ان کو جو بین الاقوامی سطح پر مختلف سفارت خانوں سے جو سپورٹ حاصل ہے اس مالی امداد کا راستہ اور رصد کو بند کیا جائے. تیسری بات یہ کہ ہم کبھی بھی کالعدم تنظیموں جماعتوں کے مقابلے میں نہیں. مکتب تشیع ایک مکتب ہے, ایک آئین ہے, ایک پورا ایک نظریہ آئیڈیولوجی ہے. ہم کبھی بھی ان کالعدم تنظیموں کے مقابلے پہ نہیں آئیں. کیوں؟ ایک ٹولہ ہے جس کا تعلق اہل سنت والجماعت سے نہیں ہے. انہوں نے اپنا نام تو شاید اہل سنت والجماعت رکھا ہو لیکن خود اہل سنت کے مختلف مفتی اور علماء اور اکابرین اور زعماء نے یہ کہا ہے کہ یہ نام استعمال کیا جا رہا ہے اپنے مضمون مقاصد کو جمع پہنانے کے لیے. تو اس بنا پر ان کا تعلق اہل سنت سے نہیں ہے, ان کے عقائد اہل سنت کے نہیں ہیں, انہوں نے روپ یا اہل سنت کا اختیار کیا ہوا ہے. تو اس بنا پر اس کا سب سے پہلا اور بنیادی حل یہ ہے کہ حکومت جو ہے عدلیہ کی سطح پر اس چیز کو اٹھائے اور ان کا سدباب کرے, ان کو ان کا قلعہ قامہ کرے, ان کو کیفے کردار تک پہنچائے. بقیہ جو اہل سنت برادران اہل سنت کے ساتھ جو فقہی اختلاف ہیں وہ ہمیشہ سے رہے ہیں اور ان میں ڈائلاگ ہوتے رہے ہیں, مناظرے ہوتے رہے ہیں, لیکن اس وقت جس بات کی ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کالعدم تنظیموں کے خلاف ہم متحد ہوں. پاکستان سنی تحریک نے انہی در حقیقت کالعدم جماعتوں کے خلاف اور اپنے ہونے والی ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف ابھی ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کی ڈیٹ ابھی مجھے یاد نہیں, میں آپ کو دیکھ کے بتا سکتا ہوں. ہم وہاں گئے تھے پریس کلب, ہم نے وہاں جا کے ان کے ساتھ ذرا یکجہتی کیا. تو صرف شیعہ ہی نہیں بلکہ اہل سنت کو بھی مارا جا رہا ہے. اس بنا پر اس کا حل یہی ہے, وہ قانونی حل ہے کہ حکومت اس کو در حقیقت مہار کرے. اگر یہ مہار نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کے ہر مکتب کو, ہر اقلیت کو, ہر شخص کو اپنا نشانہ بنائیں گے اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہوں گے, پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کریں گے.